ਨਾਮ ਅਵਗਤ ਆਪ ਦਇਆਲ ਜਨ ਪਰਬ੍ਰਹਮ ਪਾਰ ਅਪਾਰ ਨਮੋ ਅਨਾਮੀ ਅਖੰਡ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰ ਨਮੋ ਅਨਾਦ ਅਖੰਡ ਧਿਨ ਪਰਮਾਤਮ ਪਰਦੇਵ ਚਿਤਵਨ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਦੋਂ ਪਰਮਾ ਪਰਮ ਅਪਰੰਪਾਰ ਅਭੇਵ ਦਇਆ ਨਿਧੀ ਇੱਛਾ ਕਰੀ ਜਗ ਮੈਂ ਭਗਤ ਵਦਾਰ ਤਵ ਸੰਤਨ ਅਗਿਆ ਦਈ ਮਮ ਪ੍ਰਗਟ ਵਿਸਤਾਰ ਸੁਈ ਵੰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤਹਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਤਾਤ ਮਾਤ ਸੂਰਜ ਉਦਤ ਨਮੋ ਸੰਤ ਨਿਜ ਸਾਰ ਅਭਿਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਤੋਂ ਨੇ ਬਾਤ ਬਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਭਿਵਕਤ ਰੂਪ ਸੇ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ ਰੂਪ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਨਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਜਾਏ ਤੋ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਤੋ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਯਦਿ ਇਹ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹਮਨੇ ਆਪਣੀ ਭਗਵਤ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਕਿ ਉਨਕੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋ ਉਸੀ ਰੂਪ ਮੈਂ ਪਰਿਣਤ ਹੋਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਕਾ ਜਾਂ ਜਿਨਕੋ ਜੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੀ ਉਸਕੋ ਉਸੀ ਰੂਪ ਮੈਂ ਉਨਕੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਸ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਕੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਕਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ ਵਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਸਤੇ ਸੇ ਜਾਣੇ ਲਗੇ ਪਹਾੜੀ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਪਤਲੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪਗਡੰਡੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰਫ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਪਹਾੜ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਖਾਈ ਅਬ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਆਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਪਹਾੜ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਬ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਗੇ ਜਾਵੇ ਕਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੇ ਤੋ ਦੇਖਾ ਵਹਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਰੀਂਚ ਆ ਗਿਆ ਆਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪਿੱਛੇ ਰੀਂਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਰਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਖੱਡੇ ਮੈਂ ਉਤਰ ਸਕਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜੀ ਪਰ ਚੜ ਸਕਤੇ ਨਹੀਂ ਅਬ ਕਰੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਾ ਵਾਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਆਪਕੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੋ ਐਸਾ ਉਨਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂ ਥੇ ਵਹੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋਗਾ ਤੋ ਹੋਗਾ ਔਰ ਕਿਆ ਚਾਹੇ ਤੋ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰੇਗਾ ਯਾਂ ਰੀਂਚ ਮਾਰੇਗਾ ਸ਼ੇਰ ਕੋ ਮਨੁਸ਼ਰ ਕੀ ਗੰਧ ਆਈ ਆਗੇ ਬੜਤਾ ਗਿਆ ਬੜਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਗੇ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਆ ਔਰ ਦੂਰ ਸੇ ਗੁਰਾਣੇ ਲਗਾ ਆ ਤੋ ਖੁਰਾਕ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਲਾਇਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁਆ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾ ਤੋ ਸਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਗ ਸਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਮਸਤੀ ਮੈਂ ਇਕਦਮ ਗੁਰਾਣੇ ਲਗਾ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗਾਂਵ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਥੇ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਭਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਥੀ ਲੋਕ ਬਾਗ ਬੈਠੇ ਥੇ ਅਬ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਔਰ ਰੀਂਚ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਵਹਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਧਰ ਸਭਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਸਭਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਤੇ ਇਕਦਮ ਚੌਂਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਛੜੀ ਉਠਾਈ ਛੜੀ ਹੱਥ ਮੈਂ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹੁੰਕਾਰ ਕੇ ਹੂੰ ਡੰਡਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਜੈਸੇ ਉਠਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹੁੰਕਾਰ ਕੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣੇ ਲਗੇ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਯਹਾਂ ਤੋ ਸਭੀ ਤੋ ਸਤਸੰਗ ਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਔਰ ਯਹਾਂ ਹੀ ਏਕਾਏਕ ਡੰਡਾ ਉਠਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸ ਕੋ ਮਾਰ ਰਹੇ ਬਾਤ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸ ਪਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਆ ਕਿਆ ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ ਸੰਤੋਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਗਵਾਨ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਭਜਨ ਕਰੋ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਈਆ ਨਾਮ ਲਓ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਨਾਮ ਲਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਬ ਉਨਕੋ ਬਤਾਇਆ ਔਰ ਆਗੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਬਤਾਣੀ ਥੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਮਨ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਜਬ कुछ समय बाद में सेवादास की आंख खुली जब बैठे थे तो वो शेर भाग गया, रीछ भी भाग गया। उनको भगाने के लिए राम रूप गुरुदेव सहायक। तो इधर तो गुरु महाराज के रूप में चिंतन किया है शिष्य ने, तो भगवान ने गुरु का ही स्वरूप धारण करके वहां प्रकट होकर के उसका काम किया, सेवादार का काम किया, उसकी रक्षा की। तो प्रकट रूप में अब इनका ध्यान गुरु महाराज के रूप में परमात्मा का चिंतन है, तो परमात्मा को उसी रूप में बनकर के उनकी सहायता करनी पड़ती है। तो यदि प्रकट रूप में हमें परमात्मा का दर्शन करना है तो गुरु के रूप में हम कर सकते हैं। निर्गुण ब्रह्म सर्गुण शिव, निर्गुण ब्रह्म है उनका शब्द है, वो तो निर्गुण ब्रह्म है, और उनका शरीर है वो सगुण साकार देह है। उनमें निर्गुण सगुण दोनों चीज मौजूद है, परंतु भैया ये भावना गुरु महाराज की कृपा से हृदय में बैठे तब काम बनता है। वे ही इस प्रकार का मार्ग सुलझाते हैं, बताते हैं, सुलझाते हैं, वो हमारी समझ में आ जाएगा तो जीवन धन्य बन जाएगा। परमात्मा व्यक्त जहां जिन उनकी इच्छा होती है भक्ति को बढ़ाने के लिए अपने पास में रहने वाले परिकरों को संसार में भेजते हैं कि तुम जाओ संसार में, जन्म धरो धर जाय, अनंत हंस को संगले आण मिलो मो माए। अपने पास में रहने वाले परिकर लोगों को आज्ञा देते हैं कि तुम मृत्यु लोक में जाओ, अनंत प्राणियों को प्रभु के चरणों की तरफ मोड़ करके उनका भवबंधन मिटा करके और मेरे पास में लेकर के आओ। अब जिस वंश को प्रकट करना होता है, जिस वंश को उजागर करना होता है, जिसकी महिमा बढ़ाना चाहते हैं, आप उसको उसी जगह भेज देंगे, तुम्हें उस जगह जाना पड़ेगा। अरे भाई, मास्टर को सरकार नियुक्ति देती है, उस स्कूल में जाओ, उस स्कूल में जाओ, शहर में भेजना शहर में, गांव में जरूरत गांव में, जिस जगह की आवश्यकता प्रतीत होती है वहां पर भेजते हैं। इसलिए जिस वंश को प्रकट करना होता है उस जगह ही भगवान अपने ऐसे प्यारे परिकरों को भेजते रहते हैं, वे वहां पर जाकर के उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वहीं पर भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। दयानिधि इच्छा करी जग में भगत बदार, तब संत ने आज्ञा दी, संतों को आज्ञा दी कि मेरे प्रकृति का तुम फैलाव करो। अब जिसकी परमात्मा की इच्छा होती है वही वन संसार में स्वाभाविक प्रकट हो जाता है, पूजनीय बन जाता है। परमात्मा का अवतार कई प्रकार से होता है, एक तो होता है नैमित्य का अवतार, एक होता है नित्य अवतार। अब नैमित्य का अवतार में तो परमात्मा जब कभी जरूरत होती है उस समय प्रकट होते हैं, परंतु नित्य अवतार के रूप में वे सदा ही अपना निगुण सगुण दोनों प्रकार का स्वरूप धारण करने वाले संत महापुरुषों के माध्यम से विराजमान रहते हैं। नित्य अवतार अनुसार एक आराध्य सब ये नित्य अवतार रूप बनकर के संसार में एक परमात्मा की आराधना करते हैं, और कष्ट नैमित्य अवतार है, जब जब आवश्यकता पड़ती है उस समय काम सफल करते हैं। परशुराम जी, प्रथुर, व्यास ये कला के अवतार कहलाते हैं, 16 करा युक्त भगवान कृष्ण और राम जी कहलाते हैं, पृथ्वी का भार उतार करके राक्षसों का वध करके विष्णु भगवान ने अपना शरीर धारण किया, और इसी प्रकार तम अज्ञान मेटन कर्ण राम संत पधारिया, संसार में अज्ञान रूपी जो अंधेरा है उस अंधेरे को दूर करने के लिए परमात्मा की आज्ञा पाकर के ये नित्य अवतार रूप संत महात्मा यहां पर पधारे हैं। ऐसे गुरु महाराज को वे संत रूप, संतों में गुरु महाराज में कोई भेद नहीं है, तो तीनों को एक रूपता दी है। बताया जा पर्ची जिम वर्णन आता है कि राम स्नेही जाको नामा हरिगुरु साध संगत विश्रामा, राम स्नेही वो कहलाता है जो राम जी की तो भक्ति करता है, गुरु जी की आज्ञा में चलता है और संतों के समाज में रहता है। अर्थात संतों के समाज में ही गुरु महाराज मिलेंगे, और गुरु महाराज के मिलेंगे तो भगवान का भजन कराएंगे ही। संसार के गुरु तो अपने देह का भजन कराते हैं कि मेरा ध्यान करो, मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन सच्चे संत महापुरुष होते हैं, केवल परमात्मा का भजन कराते, उनका नाम लो तुम्हारा कल्याण होगा। उनके भजन से ही जीव का कल्याण होता है। शरीर है तो इसके लिए तो बताया कि देह खेह की खान, जेतु चेलो देह को तो देह खेह की खान, और जेतु चेलो शब्द को तो शब्द ब्रह्म पहचान। यदि शरीर के शिष्य बनते हैं तो शरीर तो राख बन जाएगा, सबका बनेगा, हमारा बनेगा उसी प्रकार, क्योंकि सगुण का रूप है वो तो काम बनेगा ही, मिट्टी का, मिट्टी का आकार मिट्टी में, जल का जल में, वायु का वायु में, आकाश का आकाश में, सब जगह अपना अपना तत्व मिल नहीं है। तो इस प्रकार शरीर सबका है तो एक ही है, लेकिन अब यदि शब्द के शिष्य बनते हैं, जो उन्होंने शब्द दिया, उपदेश दिया, जो वचन के हैं उसके शिष्य हैं, वो सदा अमर रहने वाला है, वो कभी मिटने वाला नहीं। तो इस प्रकार वास्तव में ये जीवात्मा के विषय में उस ब्रह्म के साथ में संबंध जोड़ने के लिए हमें गुरु महाराज की भावना में निर्गुण सगुण दोनों ब्रह्म का अनुभव करना चाहिए। भक्ति प्रथम नमो ररकार उभय मात्रमता लागे, गुरु महाराज के प्रत्येक अक्षर को वंदन करते हैं, एक एक अक्षर में, रकार में, मात्रा में, मकार में, ये राम स्मरण जो होता है अनेक में, जो इन पर पंच अक्षरों में पांचों प्रकार के अक्षरों के दास है, ये पांच जो अक्षर है गुरुदेव जी महाराज के, उसी पांचों अक्षरों को मैं वंदन करता हूँ, और नित्य प्रति वंदन करने से जो उनके चरणों में रहने वाली चरण रेखाएं ऊर्ध्व रेख पुनि पदम कुलश अंकुल जव केनम, ऊर्ध्व रेखा है, पदम है, कुलश है और अंकुश है, चंद्रमा है, ब्रकुटी रेशा है, ध्वजा है, कमल है, इत्यादि जो चरणों में चिन्ह होते हैं, वो संपूर्ण चरणों के चिन्हों को मैं वंदन करता हूँ, शरीर की प्रत्येक रेखाओं को वंदन करता हूँ, जो हर प्रकार से प्रत्येक प्राणी को आनंद ही आनंद प्रदान किया करती है। उन महापुरुषों के शरण में जाने पर नष्ट निधि सब सिद्धि मुक्ति निधि अज्ञाकारी, उनके चरणों में जाने पर नौ जो निधि है और आठों जो सिद्धि है, वे सब की सब आज्ञा में चलने वाली हो जाती है, सब सदा आज्ञा पालन करती है। राम बिल्या का रामदास समाचार है एक, रिद्धि सिद्धि दासी पांव तड़ सेवा करे अनेक। इसमें बताया कि राम जी से मिलने का एक ही परिचय है कि संतों से राम जी मिले कि नहीं, क्या पता, कि सिद्ध सिद्ध बात है, रिद्धि और सिद्धि उनके चरणों में वंदन करती है, जो चरण सेवा होती रहती है, यही राम जी के मिलने की पहचान है। यदि राम जी से नहीं मिलते तो लक्ष्मी उनके चरणों में नहीं आती। जब राम जी हृदय में विराजमान है तो लक्ष्मीता का चरण समावे, भगवत रूप हृदय में आवे लक्ष्मीता का चरण समावे, जब भगवान का रूप हृदय में आता है तो लक्ष्मी उनके चरणों में आकर के शीश झुकाती है, उनके चरणों को वंदन करती है, यही उनके पहचान है। तो आठ सिद्धि है, नौ निधि है, इस नव निधि पद्म महापद्म कर्म कूर्म इत्यादि नव निधि है, ये सब के सब उनके सामने सेवा में हाजिर रहा करती है। चार प्रकार की जो मुक्ति है वो उनके चरणों में हाजिर है, गुरु महाराज के चरणों में। सभी जो जीवधारी अपना अहम भाव छोड़ करके उन गुरु महाराज के शरण में चला जाता है, वो सहज में मुक्त हो जाया करता है। प्रेरक सदगुरु पंत के जीवन तारण हार, ऐसा समर्थ एक ही बल हल बारम्बार, जो संपूर्ण जीवों को प्रेरणा देने वाले हैं, ऐसे सबको प्रेरणा देने वाले गुरु महाराज के चरणों में मेरी बारंबार वंदन है, मैं बार बार उनको प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ एक ने सवाल किया, पक्षवादी ने, पक्षवादी ऐसे कहे चरण शरण सोई मोक देह धर्म इंसा कवन जीवन सिर जीव दोष। यहाँ शरीरधारी गुरु का भी शरीर है, हमारा भी शरीर है, तो शरीर में और गुरु में विशेषता क्या हुई? तो हमारे को तो दोष लगता है कोई काम करे, तुम कहते गुरु जी को दोष नहीं लगता, इसका कारण क्या है? उन्होंने बताया, जवाब दिया, वहां पर सिद्धांति का वचन है कि देखो, शरण गिणे चरणों गिणे, जब परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं ओ परमात्मा ने जिन्होंने अपने आप का एकाकार कर लिया, संबंध उनके साथ में जोड़ लिया, तो उनके द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया परमात्मा की जिम्मेवारी में चली जाती है। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट गाड़ी का होता है, गाड़ी से जो नुकसान होता है, परंतु अब उस गाड़ी के नुकसान का दंड ड्राइवर को देते हैं, क्योंकि चलाने वाला वो है। तेने ठीक नहीं चलाया, तेने ये एक्सीडेंट कर दिया, तेने वो कर दिया, खुद गाड़ी को दंड थोड़ी देते हैं कि तुमने एक्सीडेंट क्यों कर दिया। तो यहां वे अपना आत्मसमरण पर परमात्मा को कर देते हैं, इस कारण से वे संसार के दोषों से वंचित होते हैं, उनको किसी प्रकार का दोष छू नहीं सकता। और हम लोग माया जाल में फंसे रहने के नाते संसारी लोग होते हैं, इसलिए मोह जाल में फंसे होने के कारण से उन कर्मों के भागीदार बनते हैं, क्योंकि उनके जिम्मेवार हम हैं। इनकी जिम्मेवारी यदि हम गुरु महाराज के शरण में जाकर के अपनी सारी जिम्मेवारी सौंप देते हैं, गुरु महाराज को सौंप देते हैं, गुरु महाराज कृपा करके अपना अगला रास्ता बता करके परमात्मा के साथ में अपना संबंध जोड़ देते हैं, तो सारे संसार के बंधन वाली जो कड़ियां हैं टूट जाएगी, और हम सहज में जैसे वो सत्पुरुष मुक्त हैं उसी प्रकार हम भी मुक्त हो जाएंगे। गुरु सिद्धांत में पक्षवादी, मतवादी इत्यादि लोगों की कोई बात कामयाब नहीं होती है, अर्थात ये सब इसके सामने झुक जाया करते हैं, क्योंकि इसमें तत्ववादी मतवादी पहुंचे नहीं। तत्ववादी के देश अवनी सूर्य मिला भगत रामा ब्रह्मालेश। अरे भैया, जो मतवादी मन की बातें करने वाला होता है, वो कभी भी जो तत्ववादी है उस ब्रह्म के साथ में अनुभूति करने वालों का सिद्धांत कभी वो पहचान नहीं सकता, क्योंकि मनमुखी होता है, सदा अपने मन की चाल चलेगा और तत्व की बात तक उसकी रुचि पहुंच नहीं पाती है। तत्व होता है क्या है ये उसकी समझ में नहीं आती। इस कारण से अवधि सूर्य मिलाप कर, अरे सूरज और पृथ्वी ये कदर कभी सदा एक साथ में मिलते हैं क्या? पृथ्वी अपनी जगह है, वो सूर्य अपनी जगह है। पृथ्वी जड़ता में और सूर्य सदा प्रसंग को प्रकाश करता हुआ सारे ब्रह्मांड में नित्य भ्रमण करता रहता है। तो तत्व ज्ञानी है वो सब जगह व्यापक है, और मतवादी केवल मंडूक न्याय है, मंडूक खूब मंडूक में समान बना रहता, बाहर कुछ देखता ही नहीं। एक बार एक कोई हंस कहीं से उड़ा हुआ जा रहा था, चलते चलते उसने एक ऐसे कुएं के किनारे विश्राम किया जो काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ, पानी मुंह तक भरा हुआ है, आसपास में मिट्टी कचरा ये पड़े हुए हैं। वह हंस आकर के उस कुएं के पास बैठ गया। वही एक मेंढक जो कुएं में पुदक पुदक कर रहा था आया, जब हंस के पास में आया, चूहा न चूहा नहीं मेंढक, मेंढक आया। अब हंस को दया आई, ये जलचर है बेचारा, पानी में रहने वाला जानवर है, तो ये तो छोटा सा तालाब है, कभी कभी खाली हो जाता होगा, दुख भी भोगता होगा, ऐसे समय में बिना पानी के बेचारा क्या करता होगा। उसने कहा, अरे भैया, मेंढक भाई, मेंढक भाई, हाँ बोलो भैया, क्या बात, तुम मानसरोवर चलना चाहते हो क्या? मानसरोवर, ये क्या नाम है, मानसरोवर कहाँ है? बहुत बड़ा एक तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। मेंढक ना, कितना बड़ा तालाब, मेरी इस जगह से बड़ा है क्या? अरे हाँ बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? मेंढक अपने आगे के दोनों हाथ लंबे कर दिए। इतना बड़ा है क्या? अरे नहीं नहीं इससे बहुत बड़ा है। तो अपने पीछे टांगे लंबी कर दी, दोनों हाथ लंबे कर दिए, दोनों पैर लंबे कर दिए। इतना बड़ा है क्या? अरे नहीं नहीं और बड़ा है। मेंढक अपना श्वास फुला कर पेट फुला दिया। इतना बड़ा है? अरे नहीं नहीं बहुत बड़ा है। हाथ पसारे हो, पैर पसारे हो, पसरियो सारो घात, इनसे मोटो मानसरोवर कैन सुनन की बात। मेंढक ने बिल्कुल झूठे हो तुम, तो इससे बड़ा कोई है ही नहीं संसार में। इतना बड़ा मैं हो गया, इससे भी कोई बड़ी चीज है क्या संसार में? मतवादी संसार में ऐसे होते हैं, जो केवल अपनी सीमा तक ही रहना चाहते हैं, सिद्धांत की बात की पकड़ वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि अपनी मंडूक न्याय में अंदर ही अंदर अपने एरिया में घिरे रहते हैं, बाहर की बात तक वे पहुंचना चाहते नहीं, पहुंच सकते नहीं। यदि इससे बाहर निकले तो बाहर के वातावरण का कुछ पता भी चले। इसलिए बताया कि मतवादी पहुंचे नहीं, तत्वादी कहते अवनी सूर्य मिला भगत रामा ब्रह्म आलेश। इसी प्रकार उस ब्रह्म परमात्मा के साथ में अपना संबंध जोड़ने के लिए हमें गुरु महाराज के साथ में संबंध जोड़ लेना चाहिए। यही बहुत सुगम सरलतम तरीका है उस तत्व को पहचानने के लिए। सबको सारम गुरुगम तत्वम, जितने भी शास्त्र का सिद्धांत है उनका एक ही तत्व है कि गुरु आदिश मध्य गायब जो पहले जितने हुए हैं, जो वर्तमान में हैं और जो आगे होंगे, उन सब का एक ही कहना है। साध अनाद अगाध अपारम, संत महापुरुषों जो है का उनका आश्रय अपना लो, आप स्वयं जैसे वे हैं उसी प्रकार अगाध और असीम बन जाओगे, क्योंकि वे अपना संबंध हटा करके सीधे परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ देंगे और हमारा ये सीमित एरिया है, इस सीमित एरिया को दूर कर देंगे। जिज्ञासी आनंद मंडियो रुचि उपजी सुनिशोय, जिज्ञासु आदमी के हृदय में ये बातें सुनकर के बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। हे वक्ता पावन परम, हे वक्ता महाराज आप परम पवित्र महापुरुष हो, और जीवात्मा को जैसे अच्छी प्रकार गम हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसी आप कृपा करके हमें बात बताते रहिए। सत्संगत परताप विद भिन्न भिन्न कयो दयाल, आपने सत्संग की बात भांति भांति से बताई है, शास्त्रों में भांति भांति से कही गई है, इसलिए मैं उसका प्रभाव बारंबार सुनने का जिज्ञासु हूं। इसलिए बिना पढ़ाया पाठ वेद विद्या नहीं सज है, जौरी बिना न गम हीर रोड़ी कर तज है, औखद जांड से छार वेद बिन भूटी खोवत, शान पास पति व्रत बिना पति निश्चय रोवत, वस्तु अनंत घट मत सभे सदगुरु बिना न पाये है, कमल चंद्र हेमत कमदार इम आपे बचताय है। महापुरुषों ने बात बताई, यदि पढ़ाई कराने के लिए पढ़ाई कराने वाला हमें नहीं मिलेगा तो वेदों का पाठ हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, वेद विद्या हम नहीं सीख सकेंगे। मतलब यहाँ एक बात समझने की है कि गुरुमुख हुए बिना हमें कोई बात मिलने वाली नहीं है। वेद सीखना है तो वेद पंडित जी के पास में बैठ करके उनका अध्ययन करना पड़ेगा। जौरी बिना नगम हीर रोड़ी, बहुत बढ़िया हीरा है परंतु उसको पहचानने वाला जौहरी यदि नहीं मिलेगा, उस हीरे को पत्थर बांध करके फेंक देगा, गिरा देगा। हीरा बढ़िया है लेकिन और जौहरी होगा तो उसको पहचान लेगा। वैद्य जी अच्छे हैं तो हरेक बूटी को औषधि के रूप में काम में ले लेंगे, नहीं तो स्वर्ण भस्म बनी हुई है, अरे ये क्या राग की पुड़ी बना के रख दी, बाहर पटको ना, औषधि को राग समझ करके पटक देंगे, नाश कर देंगे। ये सारी चीजें सही जानकारी के हुए बिना इनकी पहचान नहीं होती है। शान पास पतिव्रत बिना पति निश्चय होता, पागल आदमी के पास में यदि कोई पतिव्रता स्थिति रहे तो उसकी पहचान क्या करेगा वो, निश्चय रूप में उनको तकलीफ भोगनी पड़ेगी। इसी प्रकार हमारे अंदर अनेक प्रकार की वस्तुएं, अनेक प्रकार की उत्तम बातें मौजूद है, परंतु वे सब होने पर भी गुरु महाराज के मिले बिना, सब कुछ होने पर भी नहीं जैसी है, एक भी चीज काम आने वाले नहीं है। कमल चंद रेवत कमद, अब देखिए कमल के लिए चंद्रमा और कुमुदनी के लिए जैसे सूर्य निरर्थक है, कमल रहता है ना वो तो सूर्य की किरणों से विकसित होता है, और कुमुदनी होती है वो चंद्रमा की किरण से खुलती है। अब दोनों ही फूल हैं, धरती पर रहने वाले हैं, पानी में खिलने वाले दोनों फूल हैं, परंतु दोनों में अगर कमल नहीं है, कमल का फूल है तो उसके लिए चंद्रमा बेकार है, क्यों उसका कोई असर होता नहीं, और कुमुदली है तो उसके लिए सूर्य बेकार है, जिसका ग्राहक होगा तो उससे वो चीज विकसित होगी, दूसरे से काम नहीं बनता। कमल चंद्र रहमत तो कमद, वे होने पर भी जिसे काम नहीं आते हैं, इसी प्रकार हमारे अंदर सब प्रकार का बोध ज्ञान मौजूद है, परंतु सब कुछ होने पर भी जब तक हमें उनकी पहचान बताने वाला गुरु नहीं मिलेगा, तब तक अंदर रहने पर भी हमारे काम आने वाले नहीं है। हैं हमारे अंदर, भगवान हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनको बताने वाला गुरु नहीं मिलेगा तो हमारे को अंदर होने पर भी नहीं मिलेंगे। जन हरिराम राम घटवाही बिन खोजा कोई पावत नहीं। घट के अंदर मौजूद है, लेकिन वो खोज बताएगा कौन? कोई जानकार होगा तो ही तो खोज बताएगा, जो जानता ही नहीं वो क्या पता बताएगा। इसलिए उसको अपना पश्चाताप करना पड़ेगा। अपने अंदर सब कुछ है, लेकिन है वो काम की चीज नहीं है। पति बिन पति प्रत कवन कवन कजी आय बिन सूरा, तप बिन नरपत कवन शब्द बिन संतन पूरा, दृग बिन कर्ण नहीं परक भुजा बिन तिरणों कैसे, बुद्ध बिन हम ज्ञाता कवन नाक बिन भूषण जैसे, श्रवण बिन सुनता कवन मुख बिन स्वादन पाय है, जन रामा गुरुदेव बिन राम करे नहीं शाय है। पति के बिना पतिव्रता है वो काम की नहीं है, क्योंकि उसके बिना अपना धर्म कैसे रहेगा? यदि युद्ध नहीं किया तो सूरवीर कैसे कहलाएगा? तपस्या कोई करता ही नहीं है तो राजपद कैसे पाएगा? राजपद पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। और साधना नहीं की है, शब्द बिना शब्द के बिना कोई संत कैसे कहलाएगा? आंखों के बिना कोई देखना चाहेगा तो कैसे देख पाएगा? हाथों के बिना कोई पानी में तैरना चाहे तो कैसे तैर पाएगा? बुद्धि के बिना कोई चीज जानकार रखना चाहेगा, याद रखना चाहेगा, कैसे रख पाएगा? नाक के बिना कोई गहना पहननी चाहे तो कोई गहना कैसे पहनेगा? नाक का गहना नाक के बिना कोई शोभा देता है? बाल लटका दो क्या काम आएगा? श्रवण सुनता कान नहीं है, कोई सुनना चाहे तो कैसे सुन पाएगा? इसलिए कोई चीज वस्तु का स्वाद अगर लेना है कि ये चीज कैसी है, खट्टी है मीठी है, तो मुंह के बिना जीव के बिना कोई स्वाद की परीक्षा करना चाहे तो स्वाद कैसे पा सकेगा? स्वाद की परीक्षा लिए जीव की आवश्यकता है। इसीलिए अपनी अपनी चीज की आवश्यकता। जनरामा गुरुदेव बिना, गुरु महाराज के बिना बतायो राम कदे नहीं शाय है। राम जी है हमारे पास, लेकिन वे हमारी सहायता नहीं कर सकते। वे पहचान कर देंगे तो सारा काम बन जाएगा, हमारे तत्काल काम बन जाएगा। गुरु महाराज की बड़ी दुर्लभता बताई है संसार में। राम अनंत दातार पुत्र निद्र सिद्ध अनंत राज राजम सब देवे, देव लोक मद सिद्ध मानस भी ही उरलेवे, रस अनंत दातार विद्यादान अति करे है, और जगत होत पर सिद्ध वचन वायक सब फिरे है, इंद्रादिक कर देवता कुमेर जेम अगटम करे, मरे नहीं खड़ग धार पर जंत्र मंत्र उछ फिरे। ये अनेक प्रकार की सिद्धि संसार में कोई अगर प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है। किसी को बेटा दे दे, राज दे दे, धन दौलत दे दे, देवलोक में ले जा दे, मनमाना सा काम करा दे, अनेक प्रकार के रस दे दे, विद्या भी पढ़ा दे और संसार में प्रसिद्ध भी हो जाए, तरह तरह के ज्ञान चर्चा सुनकर सुना करके लोगों में खूब अपने यश फैला दे, इंद्र इत्यादि तक देवलोक में भी पहुंच जाए, कुबेर के समान धनवान भी बन जाए, तलवार की धार के ऊपर चले फिर भी मरे नहीं, जंत्र मंत्र ये सब नाना प्रकार के सीख लेके भी संसार में प्रसिद्ध हो जाए, परंतु ये सारे होने पर भी जब तक इसने गुरु का आश्रय नहीं लिया है तब तक ये सब के सब करे कराए बेकार हो जाएंगे। गुरु महाराज के गुण अनंत है, आचरणे में आते नहीं है, सर्व ब्रह्म पार अपार, गुरु महाराज के समान केवल गुरु महाराज ही है, उनके बिना संसार में सब जगह काल ही काल है। चात्रक ब्रह्म विचार वाण विद्या सब जानत, धर्म परम परवीन सर्व सिद्ध गुरु ते थानत। ब्रह्म विचार विद्या शास्त्रों का अध्ययन भी है तो गुरु महाराज से मिलेगा, बाण चलाना सीखना है तो गुरु महाराज से मिलेगा, धर्म जो बात है वो गुरु महाराज से मिलेगी, सारी विधि सर्व विधि गुरु ते ठाना था, वाहन चलाना सीखना है तो गुरु महाराज से मिलेगा, धातु बनाना है मतलब सोना बनाना है, रस रसायन बनाना है तो ये भी गुरु महाराज से सीखना पड़ेगा, ज्योतिष विद्या सीखनी है तो गुरु महाराज से सीखनी पड़ेगी, आप सात और स्वर गान सीखना चाहते हो तो गुरु महाराज से सीखना पड़ेगा। ये वर्षा की वर्ष बारह महीनों की जो गतिविधि बताने की बात है तो भी वो गुरु महाराज से मालूम करोगे तब पड़ेगा। ज्योतिष विद्या सीखोगे तो गुरु महाराज से मिलेगा। तो ये जैसे गुरु के बिना ही विद्याएं प्राप्त नहीं होती है, इसी प्रकार आत्म कल्याण की बात भी सच्चे गुरु के आश्रय के बिना हमें मिलने वाली नहीं है। पर गुरु महाराज का उपकार मानेंगे तो ये सारा काम बनेगा। अरे कपड़ा दर्जी के पास जाओगे तो कपड़े को फाड़ तोड़ करके अच्छा सिला देगा, सिखा देगा, कारीगर करेगा। सुनार के पास में जाओगे सोने के टुकड़े कर करा करके बढ़िया गहने बना देगा सुंदर। और लोहार के पास में जाओगे लोहार भी लोहे को तपा तपू करके बड़ा सुंदर आकार दे करके उपयोगी चीज बना देगा। मास्टर के पास में जाओगे तो अक्षरों को जोड़ तोड़ करके पढ़ने की बात बताएगा और गुणा भाग इत्यादि जोड़ बाकी सिखा देगा। इनके बिना आप कोई भी आप करना चाहो तो अपना आप देखे मैं ये काम कर लूं संभव नहीं है। कुमार के समान बर्तन बनाना है तो कुमार के पास में जाओ। तो ऐसे गुरु महाराज से आत्म कल्याण सीखना है तो गुरु महाराज के पास में जाओ, उनके बिना ये चीजें मिलने वाली नहीं है। उनसे उनका उपकार मानना पड़ेगा जिससे जो चीज ली है। अपन देखे कि उपकार तो माने ही नहीं और हमारा काम सीख तो ले और सीख कर किसी के बिना उपकार नहीं मान करके गड़बड़ घोटाला हो जाता है। एक संत प्रसंग सुनाया करते थे। एक देखो गाय चराने वाला ग्वाला जंगल में गाय चराने के लिए जाता। वह गाय चरती वो तालाब के किनारे पर बैठ करके पेड़ की छाया में मस्ती से अपने गीत गाता। जाए गाय चर घूम करके आती बड़ी अच्छी तरह, पानी पीने के लिए तालाब पर आ जाती, वो भी वहां पानी पीना करना बैठना छह आराम से अपने कर लेता था। वही तालाब पर किनारे पर एक बुगला बैठा। वो बुगला तालाब में मछली पकड़ता है। तो अब मछली पकड़ करके मछली के साथ में बुगला खेल खेलता है। मछली को पकड़ा फिर उसने ऊपर को उछाला, ऊपर उछा करके उसने फिर अपने चोंच नीचे की, फिर चोंच में पकड़ी, फिर उसको ऊपर छोड़े, फिर नीचे चोंच लगावे, इस प्रकार उस मछली के साथ में खेल खेल रहा है। मछली कभी तो नीचे गिर जाती है, मरी मरी है तो मर जाती है, चोंच मारने के बाद जीवित थोड़ी रहेगी। लेकिन वो खेल करता है उसको निशानबाजी का। ऐसे वो करते करते उसको गायें चराने वाला ग्वाला बैठे बैठे देख रहा है। देखते देखते उसने भी विचार किया कि ये बुगला जो है ना ये कैसा निशान लगा करके मछली को पकड़ता है, मैं भी कोई चीज पकड़ू तो पकड़ में आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे बैठे बैठे उसने जहां बैठा था वहां पर कंकर उठा उठा करके कंकर ऊपर फेंकने चालू किए। अब नीचे मुंह करके उन पर जीभ के ऊपर पकड़ना चाहे, अब कंकर कभी तो आंख पर गिरे, कभी माथे पर गिरे, कभी गाल पर, कभी नाक पर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, बराबर निशानबाजी में कंकर सेट हुआ नहीं। कई दिन तक अभ्यास करता गया, आखिर में होते होते सीधा तीरबाजी से वो निशान से जीभ के ऊपर जो कंकर फेंका जीभ के ऊपर पकड़ना चालू कर दिया। ओहो कंकर पकड़ना तो मैंने सीख दिया, अब कोई लकड़ी का टुकड़ा उठा करके फेंकता हूं वो पकड़ में आवे कि नहीं आवे। थोड़े दिन में उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठा उठा करके उसको खड़े लकड़ी को छोटा गोद लिया, उसको फेंकने लगा, उसको जीभ के ऊपर पकड़ा। होते होते उसने लोह का टुकड़ा लगा हुआ छोटा भाला फेंक करके उसको जीभ के ऊपर पकड़ने की अपनी कला सीख ली। अभ्यास होता ना, कर्त कर्त अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। तो अभ्यास करते करते उसने वो कला सीख ली कि वो भाला फेंक करके अपने जीभ के ऊपर जो अंदर लगने नहीं दे, घाव लगने नहीं दे और जीभ के ऊपर लपक करके खड़ा कर दे। ये कला सीख ली। गांव में आकर के उसने लोगों को अपनी कला सीखा दिखाई, लोग आश्चर्य करे, अरे ओहो बड़ा ये तो काम करता है। लोगों में चर्चा हुई कि मुझे दिखा, वो के मुझे दिखा, वो के मुझे दिखा। कई लोगों को दिखाई उसने, बाहर चलते चलते राजा के कानों में पहुंच गई। राजा ने कहा अच्छा ऐसा जो जीव के ऊपर बालक को उठा लेता है ऐसा कौन आदमी है, देखो बुलाओ मेरे पास। उसको बुलाया, बुला करके कहा तुम बाला लगा लेते हो, हाथ जोर दिखाओ। उसने खड़ा करके दिखाया बाला। अब बाला दिखाया, दिखाने के बाद देखा वास्तु ने, राजा ने देखा कि वास्तु तुमने भाला खड़ा कर लिया है, बड़ी अच्छी बात है, अब ऐसे करो ये बताओ ये विद्या तुमने सीखी किससे है, तुम्हारे गुरु कौन है, किसने तुम्हें इधर प्रेरित किया, किसने तुम्हें ये विद्या सिखाई है, अपने गुरु से गुरु का परिचय बताओ, मैं उस गुरु का दर्शन करना चाहता हूं। सज्जनों उसने ग्वाले ने जवाब दिया मेरा कोई गुरु नहीं है, मुझे किसी ने सिखाई, मैंने खुद नहीं अपना विद्या सीख ली, मैंने अपना विद्या सीख ली। राजा ने कहा ये संभव नहीं, ये हो नहीं सकता, नहीं नहीं हुआ ऐसा ही है, किसी ने मुझे नहीं सिखाया, किसी नहीं सिखाया, अब की चला के बताओ, अब की जीव के ऊपर उठा के बताओ, अगर किसी ने नहीं सिखाया है तो अब की तुम्हारी जीव में खड़ा रह जाएगा, तब मैं मानूंगा तुम्हारी कला सच्ची है। और जो ही गुरु का अपमान किया कोई बदलने वाला नहीं, लेकिन जो ही उसने बाला फेंका जीव को चीर करके नीचे निकल गया, खून हो गया, जीव चिरा गई, ओ रे मर गया रे, रोने लगा, हाय हाय करने लगा। राजा ने कहा ना मैंने कहा ना कोई न कोई गुरु है तुम्हारा, लेकिन तेरे गुरु का अपमान किया, गुरु को माना नहीं, भले किसी जगह दृश्य हो अदृश्य हो सामने हो नहीं हो कोई जगह हो, लेकिन होना है तो ठीक, गुरु न गुरु कोई न कोई, बोलो किसने प्रेरणा दी। तब उसने कहा एक बुगले से मैंने प्रेरणा ली, तो बुगला तुम्हारा गुरु है, गुरु है, लेकिन तेरे गुरु की बात नहीं मानी, अब उसने प्रेरणा दी, प्रेरणा देते देते सीख करके होशियार बन गए, लेकिन प्रेरक तो गुरु वही हुआ है ना, और उस गुरु का अपमान, मेरा कोई गुरु है ही नहीं। भले ही छोटी से छोटी बात भी सीखो, वो बात सिखाने वाला गुरु है, और गुरु का अपमान कभी नहीं होना चाहिए, उनकी बात का तिरस्कार करना, उनको सम्मान नहीं देना, ये बड़ी भारी भूल की बात है, तो महान अनर्थ की बात है, महान दोष की बात है सज्जनों। इस प्रकार ये बात बताई कि ये सारी बातें कोई किसी न किसी कारीगर के द्वारा ही तो प्राप्त होते हुआ करती है, संत मिलावत ब्रह्म में वेद विद्ध कही जाते हैं। जिस प्रकार ये जीवात्मा संसार में रहते हुए परमात्मा से मिल जाए, वो बात केवल संत महापुरुषों से मिलेगी और दूसरी जगह मिलने वाली नहीं है, ये बात सब जगह प्रसिद्ध है। जनरामा गुरु अंक है, अंक बिना शुभ कत बधे, गुरु पर गुरु ईशान पद परमेश्वर प्राप्त हृदय, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सबको अपनी प्रेरणा देने वाला कोई न कोई जरूर होता है, लेकिन दूसरों में इतनी जिम्मेवारी नहीं होती गुरु के प्रति मान्यता रखने की, परंतु तो मनुष्य में अपने गुरु के प्रति मान्यता रखने की पूरी जिम्मेवारी है। जो प्रेरक है, जो प्रेरणा देने वाला है, वो हमारा गुरु है, उनके प्रति गुरु भाव रखना, उनके प्रति पूजनीय आदर भाव रखना, ये मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी नहीं, उनके लिए जिम्मेवारी है ही नहीं। हाँ प्रेरक जरूर है, अब चिड़ी के बच्चे जन्मते ही उड़ना सीख जाते हैं, कबूतर के हो किसी कौन से पक्षी के बताओ, अब वो जीव हिंसा करने वाले के घर पैदा हो गए तो जीव हिंसा करना सीख जाएंगे, अरे बिल्ली से पैदा होने वाले बच्चे शुरुआत में कुछ जीव हिंसा नहीं करते, पर तो वही बड़े होने के बाद में बिल्ली मतलब बिल्ला बन करके वही खाने का काम करने लग जाते हैं। कौवे का जो बच्चा है जन्मते ही जीव हिंसा नहीं करता, लेकिन बाद में वही बच्चे खा खा करके और वही जीव हिंसा करने का काम चालू कर देता है। कबूतर अनाज जो डंक नहीं लगा हुआ वो ये चुक चुक करके खाएगा, क्योंकि उसमें वही गुण है कि वो किसी प्रकार डंक लगे सुड़े हुए अनाज को नहीं खाता है, भूखा रह जाएगा, कंकर चुक लेगा, परंतु ये जीव हिंसा नहीं हो ये उसका नियम है। तो इस प्रकार गुरु है, इसको जिम्मेवारी मनुष्य को है, कि गुरु के प्रति निष्ठा रखने चाहिए। गुरु पर गुरु ईशान, देखो बाकी संसार में जितने भी धर्म है, ये जितने भी धर्म है वे धर्म कर्म सब के सब जीरो के समान है। सब गिनती बढ़ती है, जीरो के बिना आपका टेलीफोन मोबाइल भी काम नहीं करता है, जीरो हो तो काम करेगा, जीरो लगना जरूरी है। हरेक बातों में जीरो जीरो जरूरी है, परंतु केवल जीरो क्या काम आएगा? जीरो में यदि अंक नहीं लगाए तो अंक बिना शुभ कद बदत। अगर जीरो लगा हुआ है, दो जीरो रख दिया, तीन जीरो रख दिया, चार जीरो रख दिया, क्या पढ़ोगे? कुछ भी पढ़ने में नहीं आएगा। परंतु उसके साथ में एक अंक लग गया तो वही एक जीरो है तो दस हो जाएंगे, और दो जीरो है तो सौ हो जाएंगे, और तीन जीरो तो हजार हो जाएंगे। ये सब बढ़ते जाएंगे, दस गुणे, दस गुणा बढ़ेगा, जो भी बढ़ेगा दस गुणा बढ़ेगा। अंक रहे दस गुण, ये बताया है। तो इस प्रकार जनरामा गुरु अंक है, अंक बिना शुभ कद गुरु महाराज एक अंक के समान है। तो जो एक अंक है उसको अपना लो, काम सारा ठीक बन जाएगा। सर्वसिद्ध गुरुदेव बिना गुरु रंचन पाई, मैं का कहूं बनाए आदि अंध पुस्तक माई, जीवर संत दयाल ताय मुनि दीक्षा लेनी, एक समय विदेक विष्णु मत पारक कीनी, जान राय जानत सकल धर्म सनातन कारणे, गुरुदेव प्रसिद्ध महिमा कही जन प्रताप कहूं वारणे, सर्व कहत गुरु नाम ओ कहो मुनि सदगुरु तेरा, तब मन संख्या कीन दीन सदगुरु है मेरा, अनंत कारण ते मानव सर्व नारद को ढायद, अशीलाग तुम भगत गुरु ते शंकर आयद, थर रोम कंपत सभे कहा करो मम शाम, चूक हमारे कि मिटे दाता निधि प्रणाम। यहाँ एक प्रसंग महाराज जी ने, दयाल जी महाराज ने वर्णन किया है, संपर्क का प्रसंग इस प्रकार आता है। इसमें कथा प्रसंग है, एक समय की नारद जी महाराज का स्वभाव था, हर समय जिधर किधर से समाचार लिया, संदेश लिया, ले लवा करके बीना बजाते बजाते भगवान के दरबार में पहुंच जाया करते थे। भगवान के दरबार में पहुंच करके दुनिया की खबर उनको पहुंचा देते थे, और वहां से फिर लौट करके चले आते थे दुनिया में घूमने के लिए, कभी कहीं कभी कहीं, कभी इधर कभी इधर। उनका सहज स्वभाव था। एक दिन के बाद भगवान विष्णु का दर्शन करके नारद मुनि वैकुंठ धाम से वापस लौट चले, वापस रवाना हो गए। अब लौटते लौटते दरवाजे तक पहुंच गए, दरवाजे तक पहुंच गए, और जो दरवाजे तक पहुंचे कोई जरूरी काम याद आ गया, किसी ने कोई संदेश की बात पूछी थी, पूछनी भूल गए, अब याद आ गई, वापस लौट करके आए, जहां भगवान विराजमान थे वहां पहुंचे। अब वहां पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं, जिस जगह नारद जी बैठे थे ना, उस नारद जी के बैठे की जगह को भगवान लोटे से पानी डाल करके झाड़ू लगा करके सफाई कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, जगह अशुद्ध जगह को शुद्ध किया जा रहा है। जहां नारद जी बैठे कहीं वही कोई छोटो छोरा हो गए जो मुंह दिए उठे, लेकिन उनको शुद्ध करते देखा। ये बात नहीं, फिर सफाई क्यों हो रही है? नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने भगवान से कारण पूछा कि महाराज बताइए, जिस जगह मैं बैठा केवल इतनी जगह ही क्यों धोई जा रही है? चौक तो और भी बहुत लंबा चौड़ा है, चौकियां और बहुत है, सिंहासन और बहुत है, लेकिन किसी की सफाई नहीं, केवल मैं बैठा उस जगह सफाई क्यों? मेरी कौन सी ऐसी गंदगी लग गई यहां पर? मैंने कोई मलमूत्र त्याग किया नहीं, पेशाब किया नहीं, कोई गंदगी डाली नहीं, कोई मैंने थूका भी नहीं, ऐंटा झूठा भी किया नहीं, फिर सफाई क्यों की जा रही है? क्या कारण है? भगवान झूठ तो बोलने वाले नहीं, उन्होंने कहा नारद जी बात ऐसी है कि केवल आज सफाई थोड़ी कर रहा हूं, तुम जितनी बार यहां आते हो तुम्हारे जाने के बाद रोज सफाई होती है हमारे यहां पर, जितनी बार आप आते हो बैठते हो रोज वो सफाई करते हो, क्यों महाराज ऐसी क्या बात होगी मैं इतना गंदा हूं? अरे तुम गंदे नहीं हो, लेकिन जो पवित्रता तुम्हें होनी चाहिए वो नहीं है, तुम अभी तक नुगरे हो, गुरु ने किया है, इसलिए नुगरे आदमी के बैठने से जगह अपवित्र हो गई है। नुगरे आदमी के बैठने से जगह अपवित्र है, इसलिए महाराज मुझे जगह तुम्हारे साफ करनी पड़ती है। और मैं कैसे कहूं, तो आपने मुझे कभी याद दिलाया नहीं, तुमने कभी पूछा नहीं, ये पूछने की बड़ी समस्या है। ऐसी धर्म की बात बिना पूछे किसी को कोई बतावे सलाह देवे उचित नहीं है, वो बात तो पूछने पर ही बताने चाहिए, तभी उसका सच्चा लाभ होता है। नारद जी घबरा गए, गुरु मंत्र से अधिक्षित उसके स्पर्श होने से जगह अपवित्र हो जाती है, और ये बात भगवान ने सुनाई नारद जी के, मैं इतना गंदा हूं। अब पश्चाताप भी हो रहा है, मन में ज्ञान भी आ गया कि वास्तव में ऐसा नुगरापना भगवान को लिए दुखदायी है, तो जरूर गुरु बना लेना चाहिए, कोई बात नहीं, गुरु बना लेना चाहिए। तो इसलिए भगवान से पूछने लगे, महाराज मैं किसको गुरु बनाऊं, ये आप बता दो उसको मैं गुरु बना लूं। आप अंतर्यामी हो, आप सर्वज्ञ हो, आपसे कोई बात छुपी हुई है नहीं, इसलिए आप कृपा करके बात बताओ। भगवान से जब बात पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, देखो नारद जी ऐसे करो, आज तुम जाओ, अब सूर्योदय सुबह की टाइम तुम जब बाहर निकलो तो रास्ते में जो भी आदमी पहले मिल जाए उसको गुरु बना लेना, जो आदमी पहले पहले मिल जाए, जिसका मुंह दिख जाए उसको गुरु बना लेना। कई लोग ये भी कहते हैं, कोई कहे यहां से जाते टाइम जो तुम्हारे को बीच में मिल जाए उसको गुरु बना लेना, कैसे भी हो, मतलब जो जिसके ऊपर तुम्हारी पहली दृष्टि पड़े उसको गुरु बना लेना। अब बात सुनी, अरे बड़ी अच्छी बात, हमारा न्याल कर दिया। अब वहां से नारायण नारायण का कीर्तन करते करते नारद जी महाराज चल दिए, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
नारायण 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 नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
भगवान नाम कीर्तन करते नारद जी चले गए।